के गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिंद चले हमारे। समय सारंशीलन पृष्ठ 215 भाग दो, दूसरा पैरा, पांचवी पंक्ति से। अब रही बात समय सार की, इन गाथाओं में प्रथम स्थान पर उल्लखित अज्ञान की बात। सुवहत्व मिथ्यात्वादि चार कारणों के समुदाय रूप ही है, इस बात का उल्लेख इन गाथाओं की आत्मख्याति टीका में है ही, जो इस प्रकार है। कल दो तीन प्रश्न हुए थे कि दो आचार्यों में मतभेद क्यों है। यहां भी पांच कारण बताए जा रहे हैं और तत्वासूत्र में भी पांच हैं, लेकिन यहां प्रमाद गायब है और वहां अज्ञान गायब है, तो ऐसा क्यों है। और कदाचित दो आचार्यों में मतभेद हो भी सकता है, लेकिन एक ही आचार्य 109वीं गाथा में चार कारण बताते हैं और यहां पांच बता रहे हैं, अथवा तत्वासूत्र में पांच बताए गए, तो ऐसा क्यों है। इनका उत्तर दिया था कि भाई कोई गायब नहीं है, अविरति और कषाय इन दोनों में प्रमाद को गर्भित कर लिया गया है, इसलिए कोई मतभेद की बात नहीं है। क्या यदि गर्भित किया जा सकता है तो फिर उन्होंने अलग अलग क्यों बताए, वे भी गर्भित कर लेते तो ये प्रश्न खड़ा नहीं होता। कि उन्होंने वस्तु की स्पष्टता के लिए, कोई भ्रम किसी को न रह जाए इसके लिए अलग कह दिया, तो भी कौन सा तकलीफ हो गई। वो कहते उन्हें नहीं कहते, वे नहीं करते। अब 2000 वर्ष और 1000 वर्ष पुराने आचार्यों को क्या करना चाहिए था, उस पर बहस करने से क्या फायदा है। जो उनने किया है उसको हम जैसे भी आगम के अनुसार अपेक्षाओं को समझकर एडजस्ट कर सकें, उस बात को सोचना चाहिए। मन सुधार अपनी बुद्धि में करने की कोशिश करें, आचार्यों के ग्रंथों में नहीं। लेकिन ऐसी जो भाषा में प्रश्न खड़े किए जाते हैं, राजवार्तिक आदि में भी किए हैं, वो तो सिर्फ श्रोताओं के चित्त में बात स्पष्ट हो जाए, इसलिए वो ऐसे प्रश्न खड़े करके और उनका जवाब देते हैं, समझा ना। नहीं तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सारी सामान्य जनता में ऐसी बात आती है ना। अभी भी दो विद्वान व्याख्यान कर रहे हूं और एक में चार आ जाएं बंध के कारण, एक में पांच आ जाएं, तो जो सतर्क श्रोता होंगे वे तो कह ही सकते हैं कि उनने तो सुबह चार बताए थे और आप पांच बता रहे, इन विद्वानों में मतभेद क्यों है, मेरा मतलब आ सकता है ना। तो इसलिए वो उन्होंने स्पष्ट कर दिया, वो भी कोई बुरी बात नहीं है। उन्हें चार शामिल कर लिए, वो भी बुरी बात नहीं है, इसलिए उस बात को हमें अपने चित्त में शांत भाव से समझना चाहिए। इतनी बात हो गई थी। अब एक प्रश्न खड़ा रह गया था बाकी कल, कौन सा था वो सुरेश जी, ये अज्ञान का उदय कहां से आ गया। झगड़ा तो चार में वो पांच में था कि प्रमाद क्यों क्यों रखा हो क्यों नहीं रखा, लेकिन इसमें एक नया अज्ञान का उदय लगा दिया। तो वास्तव में इसका सीधा समाधान तो ये है कि वास्तव में ये पांच नहीं है, चार ही हैं, और चारों का मिला करके एक नाम रख दिया अज्ञान का उदय। इतना उत्तर पर्याप्त हो गया उसका था। इस चारों का मिले हुए का नाम है अज्ञान का उदय। तो वे चार कौन थे, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। अब इनमें एक भी ज्ञान गुण की पर्याय नहीं थी, और अज्ञान को हम ज्ञान गुण की पर्याय समझते हैं, तो ज्ञान गुण की पर्याय में सबको कैसे शामिल कर दिया। कहते भैया यहां जो अज्ञान है वो ज्ञान गुण की पर्याय नहीं है, इनका ये जो चार चीजें हैं ये जिस गुण की पर्याय हैं, इनका समुदाय भी उसी गुण की पर्याय है। ये मिथ्या दर्शन रूप अज्ञान है, ये औदिक अज्ञान नहीं है, शास्त्रीय भाषा में छायुक श्रमिक अज्ञान है। औदिक अज्ञान में और छायुक श्रमिक अज्ञान में क्या फर्क है? जो ज्ञानामणि कर्म के उदय से अज्ञान होता है वो नहीं जानने रूप होता है और वो बंध का कारण नहीं है, और ज्ञानावरण आदि कर्म के क्षयोपम से जो जानने रूप ज्ञान होता है वो भी मुक्ति का कारण नहीं है। ज्ञान गुण ना बंध का कारण है ना मुक्ति का कारण है। ज्ञान गुण क्योंकि जानना तो स्वभाव है, अब कैसे ही जाना, कितना ही जाना, क्या फर्क पड़ता है, हैं? और नहीं जानना एक कमजोरी है, अपराध नहीं है। अब मेरी आंख से कम क्यों दिखता है, तुम्हारी आंख से ज्यादा क्यों दिखता है, अब इसका क्या है, मुझे इस बात की सजा मिले कि मेरी आंख से कम दिखता है, ये तो अन्याय है ना। अरे मेरे चश्मा लगा करके दिखता है और आपको बिना चश्मा के दिखता है। इसलिए ऐसा लिखा है समंत भद्राचार्य ने आपने मीमांसा में, अज्ञानाते ध्रुवो बंधो के अनंतान केवली। अज्ञान से यदि निरंतर बंध होता रहेगा तो अनादि से तो ये अज्ञान है ही है, पौधे का ज्ञान है जल जीव के, और गेय तो अनंत है और सब गेयों को जानना वो ज्ञान है, तो इसलिए वो तो जान ही नहीं सकेगा सबको कभी भी, और वो अज्ञान रहेगा और बंध होता रहेगा, उसे तो रोका नहीं जा सकता जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, और जब तक उसको अज्ञान से बंध मानते रहेंगे तो बंध होता रहेगा, तो केवल ज्ञान कभी होगा ही नहीं। तो केवल ही होना है तो इस अज्ञान को बंध का कारण मत मानो, और सारी दुनिया को जानना मोक्ष का कारण भी नहीं है, तो कितनी स्पष्ट बात हो गई। हमें त्रिकाली से भगवान आत्मा को जानो तो कहते हम यही तो हम कहते हैं पर को मत जानो, लेकिन मत जानो में तो वो जानने के स्वभाव का निषेध होता है ना, क्या कि जानता ही नहीं है, इसमें तो और ही ज्यादा गड़बड़ हो गई। हम ये कहते उसके जानने से तुम्हारा बंध और मुक्ति का कोई संबंध नहीं है, फैक्ट ये है। अभय कुमार जी तो बैलेंस रखना चाहिए ना, हम इसी तत्व को प्रस्तुत करें तो प्रश्न खड़ा ही नहीं होगा। अब ये यहां पर जो अज्ञान की बात है ये तो क्षयोपशम का ज्ञान है, अब क्षयोपशम का ज्ञान वो बंध का कारण है। क्यों कि यहां पर जब क्षयोपशम भाव के 18 भेद गिनाए हैं तो उसमें 4 ज्ञान और 3 अज्ञान अलग अलग गिनाए, इसलिए क्षयोपशमिक अज्ञान में क्षयोपशमिक ज्ञान शामिल नहीं हो सकता। आप समझ ना, क्योंकि अज्ञान का खाता अलग खोला है, और इसका ज्ञान अज्ञान का भेद ज्ञानावरणी कर्म के उदय से कुछ लेना देना नहीं है, मिथ्यात्व के उदय से और अनुदय से लेना देना है। मिथ्यात्व सहित हो तो ये मिथ्या ज्ञान होते हैं, और सम्यक दर्शन सहित हो तो सम्यक ज्ञान होते हैं, क्योंकि मिथ्यात्व में 3 ही होते हैं, मन पर ज्ञान होता नहीं है। ख्याल में है, और उसमें 4 होते हैं संबंध श्री के 6 ज्ञानों में, केवल ज्ञान तो सहायक ज्ञान है। मनपरय ज्ञान का उपयोग रूप उपयोग जहां तक मैं समझता हूं छठवें गुणस्थान में होता है। कल किसी के प्रवचन में छठवें सातवें आया था, इसलिए मैं खुलासा कर रहा हूं। शुद्धोद्योग के काल में थोड़ी उसका उपयोग हो, दूसरे के मन की बात उठाए को जानेगा वो शुद्धोद्योग के काल में। क्यों आपको आप तो कह रहे थे कि वो पर के जानने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भैया ये जो ज्ञान होता है इसको बुद्धि पूर्वक, जैसे अवधि ज्ञान होता है ना, तो हमारे एक यहां पर एक स्थान है हृदय कमल, उस पर उपयोग लगाने से ही वो होता है, बुद्धि पूर्वक उपयोग लगाने से ही मन पर ज्ञान होगा, समझ नहीं ना। और बुद्धिपूर्वक उपयोग नहीं लगाते हैं वो जो वहां 8वें गुणस्थान तक बनता है ज्ञान का गे, वो तो ऑटोमेटिक प्रक्रिया के अंतर्गत बनता है, तो ऑटोमेटिक प्रक्रिया के अंतर्गत बने तो वो कोई अपराध नहीं है, और बुद्धि को तुम आत्मा पर से हटा के उस पर ले जाओ तो गड़बड़ है। बहुत हर बात में समझने की बात है क्या? तो अब ये बात क्या चल रही है यहां पर, अज्ञान यहां क्यों डाला? तो वो कहते संख्या तो तुम्हारी बिगड़ी नहीं, क्योंकि ये अज्ञान तो चारों के मिक्सचर का नाम है। घर में चाय अलग रखी है, चीनी अलग रखी है, पानी अलग रखा है, समझ गया ना? और जो भी वो डालते हो तुम, मुझे ज्यादा पता नहीं, अचार का मसाला अलग रखा है, चार चीजें अलग अलग हैं, और जो कप में चाय आई है ये पांचवा होगी, पांच में कहां, ये चारों का मिक्सचर है, ये पांचवी कहां हुई? ये जो प्याले की चाय है वो वास्तव में प्योर चाय नहीं है, वो तो मिलावटी चाय है, और मिलावटी चीज तो अच्छी नहीं होती जगत में। लेकिन ये जगत इतना भोला है कि मेरे क्यों साहब क्या चलेगा, काफी के चाय, ठंडा के गरम, ठीक है चाय चलेगी, पर चाय वो कहे चलेगी और मैंने वो चाय की पत्ती है ना वो लाऊं सौंप जैसी दूं कि साहब ले दी, कि ये चाय है? मैं कहता हूं ये चाय नहीं है। बोलो, देखो जो चाय नहीं है उसको हम चाय मानने को तैयार हैं, और जो असली चाय है वो प्योर चाय को हम चाय मानने को तैयार नहीं है। अब मैं पूछता हूं जो प्याले की चाय है वो चाय है क्या? सुनो, उसमें पानी है, दूध है, चाय है और चीनी है, चार चीजें हैं, है ना? और जब उसको हमने पका लिया तो छन्नी से छाना तो नीचे वाले प्याले में दूध भी आ गया, पानी भी आ गया और चीनी भी आ गई, और चाय निकाल के फेंक दी, रहा क्या? अब जो जिसको निकाल के फेंक दिया उसका तुम नाम लेते हो, और जो तीनों चीजें पूरी ताकत से वहां मौजूद हैं क्यों और उसको तुम नाम नहीं लेते हो? और लोक में तो जनतंत्र है ना, तो जनतंत्र में तो बहुमत जिसका हो वो नाम रखना चाहिए ना उसका, तो बहुमत तो हमें पानी का ही दिखता है, इसलिए कुछ लोग उसे गर्म पानी नाम से कहते भी हैं। किसी के दूध का बहुमत होता होगा, लेकिन चाय का बहुमत तो कभी नहीं हो सकता। तो अचाय को चाय कहना ये व्यवहार है, क्यों? चाय के संयोग से, चाय तो अब निकल गई लेकिन कुछ काल संयोग रहा था, वो एसेंस वैसेंस क्या रहा, समझ गए ना आपने? उसे चाय कहना उसका नाम व्यवहार है। लेकिन ये जगत इतना व्यवहार के प्रति समर्पित है कि उसे निश्चय चाय को चाय ही समझ में नहीं आती। अभी इसका नाम अज्ञान है, और अज्ञान नाम की चीज ही नहीं है, इसमें ज्ञान गुण बिल्कुल दूर खड़ा है। क्या काय काय का मिक्सर है जे? अब देखिए, अब ये चाय तो अपनी निपट गई, अब दूसरी चाय एक गुरुकुल कांडली की चाय, ठीक है भी? उसमें चाय नाम का पदार्थ ही नहीं होता, दस पांच चीजें आयुर्वेदिक दवाइयां होती हैं और उन्हें मिलाकर उन्होंने एक डब्बा बना दिया और उसका नाम रख दिया चाय, और उसे आप गर्म करके काढ़ा बना करके और रखो तो चाय जैसा कलर दिखाई देता है, तो उस वो चाय गुरुकुल कांडली की चाय, वो चाय के नाम से चलती है, वो चाय नाम की चीजें ही नहीं है। ऐसे गुरुकुल कांडली की चाय जैसा अज्ञान है ये, कि जिसमें ज्ञान गुण का पर्याय है ही नहीं, और बाकी चारित गुण की और योग गुण की पर्याय है। योग गुण इसलिए ले लेता हूं, योग और योग है ना, मुख्यतः चारित्र की बात है बस, समझ गए ना? फिर अज्ञान का उदय, कहते भाई ये तो चारों के मिक्सचर का नाम है, कि गाथा में तो ऐसा क्लियर नहीं है, गाथा तो अपन ने भी पढ़ी थी ना, कि ये अज्ञान का उदय है, ये मिथ्यात्व का उदय है, ये असंयम का उदय है, ये कसाय का उदय है, अलग अलग आया था ना, ये योग का उदय है, होगी चारों परिभाषाएं तो याद होंगी होंगी ना, क्यों? नहीं होंगी ना काम नहीं चलेगा वो, तुमको स्कॉलरशिप मिल गई इसका मतलब ये नहीं कि मैं थोड़ा और बाजार सकड़ा हो गया। बेटा यार ये रखना पड़ेगा सर, है ना। क्या लिखा था अपन ने, क्या पढ़ा था, देखो निज तत्व का अज्ञान ही बस उदय है अज्ञान का, है ना, और निज तत्व का अश्रधान ही बस उदय है मिथ्यात्व का, अभिरमण का सद्भाव ही है असंयम का उदय है, है ना, और योग की यह कलुषता ही कषायों का उदय है, और शुभ अशुभ चेष्टा में तथा निवृत्ति या प्रवृत्ति में जो चित्त का उत्साह है वही उदय है योग का। चेष्टाएं तो होती रहेंगी, शरीर की चेष्टा नहीं होगी, तेरा उपयोग उधर ना हो तो भी होगी, परिवर्तन तो उसमें हो गई ना, ये परिवर्तन तो हुए बिना कभी रहता ही नहीं है क्यों, लेकिन उसमें जो तेरे चित्त का उत्साह है उसका नाम योग का उदय है। यदि इसका जुड़ान नहीं हुआ तो क्या मतलब उस योग का, अगले मनोवचन काय की चेष्टा तो जड़ पुद्गल की चेष्टा है, उससे आत्मा के कर्मों का आना ज्ञान वर्णादि के प्रमुख होने का क्या संबंध है। जो तेरे चित्त में उसके प्रति उत्साह आता है वह योगों का उदय है। ऐसा लिखा ना, अब गाथा में कहीं ये गंध नहीं दिखती है, कौन सी, कि ये चार भेद अज्ञान के हैं अथवा इन चारों के समुदाय का नाम अज्ञान है। ये क्यों कह रहा हूं मैं आपको, परमे चंद्राचार्य ने लिखा है, इसके दो अर्थ हो सकते हैं, एक ये अमर चंद्राचार्य को ये अधिकार नहीं है, उनको तो वही अर्थ करना चाहिए जो उन्होंने किया है, उनने ये अनधिकार चेष्टा की है। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि नहीं साहब कुंद कुंद को साफ साफ लिखना चाहिए था, मैंने कभी कोई इन आचार्य की गलती खोजेंगे और कोई उन आचार्य की गलती खोजेंगे क्यों, लेकिन अमरचंदाचार्य ने टीका लिखी, आजकल तो हम क्या बोलते हैं, और टीका टिप्पणी बोलते ना, कि देखो उनकी आदत टीका टिप्पणी करने की है, ये अच्छी आदत नहीं है क्यों, तो अमरचंद की ये आदत बहुत खराब थी ना, हरेक की टीका टिप्पणी करते हैं, टीका टिप्पणी का अर्थ समझते हैं, टीका क्या है और टिप्पणी क्या है जानते हैं, दोनों में अंतर जानते हैं, शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे, जो हम पूरा का पूरा अर्थ लिखते हैं ना और उसको युक्तियों से सिद्ध करते हैं और कोई बात अस्पष्ट हो तो उसे खोलते हैं, ये सब का नाम टीका है, और अपन कहते बहुत सरल है भाई इसका क्या अर्थ लिखना, लेकिन एक शब्द इसमें ऐसा आ रहा है कि जिसका अर्थ लोगों की समझ में नहीं आएगा, तो उसके ऊपर एक नंबर डाल के फिर नीचे एक नंबर लिख के और उस शब्द का अर्थ लिख देना, इसका नाम है टिप्पणी। क्या ये टीका और टिप्पणी समझ गया, और आप देखेंगे अपनी इन सब में, खासकर जो अपने पहले छपा था ना अपने ऐसे जयचंद जी छाबड़ा की टीका, उसमें टीका और टिप्पणी दोनों मिलती है, ये अपनी में टिप्पणी बहुत कम मिलेगी, टीका ही मिलेगी। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्यों वो जयचंद जी छाबड़ा का था मूल, उसमें कोई माथा नहीं मार सकता था, उसमें बदलाव करना ये अन्याय था, लेकिन वो संपादक को लगा कि एक कोई बात यहां स्पष्ट रह गई, तो उसने अपनी बात नीचे एक लगा के टिप्पणी में लिख दी, क्या ये अथवा उन्होंने कोष्टक में लिख दी, क्योंकि उन्हें लगे अस्पष्ट रह गया है और मूल में तो वो शब्द है नहीं, तो उन्होंने कोष्टक में लिख दिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं विद्वानों को खासकर, यदि ये पूरी की पूरी टीका जयचंद जी की नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष की है, तो उसे कोष्टक लिखने की क्या जरूरत है, उसे टिप्पणी लिखने की क्या जरूरत है? तो जो टिप्पणियों में अर्थ दिया है वो हमारी टीका में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम अपनी टीका में शामिल कर लेंगे ना उस भाव को, अपनी भाषा में लिख देंगे ना, हमें टिप्पणी की क्या जरूरत है? हम किसी दूसरे की टीका का संपादन कर रहे होते तो हम टिप्पणी लिखते क्यों? तो फिर आपने थोड़ी बहुत टिप्पणियां क्यों लिखी? फिर ये प्रश्न खड़ा होता, सुनो, सोचना तुम सब। उनकी भी जरूरत नहीं थी कि वो ऊपर इतनी बड़ी बात सेट नहीं होती है, ना कोष्ठक से काम चलता है और ना फ्लो में सेट होती है, इसलिए हमने उसे नीचे टिप्पणी लिखी। आजकल दादा एक बात और चली है, वो टिप्पणी वहां की वहां नीचे लिख देते हैं और ऊपर वो लगा देते हैं। अब आज ये नई बीमारी चली है जो मेरे चित्त को स्वीकार नहीं है और मैंने उसे नहीं अपनाया, लेटेस्ट तो वही है, इसलिए मुझे लोग लेटेस्ट नहीं माने, साथ क्या बोलते हैं, पुरातन पंथी कह सकते हैं। वो क्या करते हैं कि टिप्पणियां सारे अंत में लिखते हैं, एक से लेकर 100 नंबर तक, पूरे लेख में 50 पेज का लेख है तो एक से लेकर 100 नंबर तक के डाल देंगे वहां नंबर, और सबसे अंत में वे 100 टिप्पणियां लिखेंगे, समय सार कथा फलाना 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 फलाना। उनका ये कहना ये है कि जिसको देखना होगा देखेगा वहां जाकर के, और जिसमें नहीं देखना होगा तो यहां बीच में वह डिस्टर्ब करेगी। डिस्टर्ब तो ऊपर करती, जब हमने लाइन के नीचे लिखा है तो कैसे डिस्टर्ब करेगी, हमारा कहना यह है। लेकिन यहां देखने के चांस ज्यादा हैं, वहां तो 50 में 100 में एक आदमी नहीं देखता है पीछे, और अकेली टिप्पणियों को कोई नहीं पढ़ता है। इसलिए हमने अपने में ये जानते हुए भी वो टिप्पणी तत्काल नीचे लिखने की ही परंपरा रखी है, और कोशिश ये की है कि कम से कम टिप्पणी लिखी जाए। अब देखिए ये टीका टिप्पणी कितना पवित्र शब्द हो गया, समझ गए आप, और आज हम किस अर्थ में प्रयोग करते हैं क्या? इनकी तो खराब आदत है, ये टीका टिप्पणी बिना नहीं रहेंगे हमारे विनय बाबू, क्यों है? माने उसको एक खराब आदत के रूप में हम मानते हैं, तो हमें चंद्राचार्य की आदत खराब थी। मेरे कहने का मतलब कितना अर्थ बदल गया है, ये आज की भाषा से आप कुंद कुंद का और अमृतचंद का मरम समझना चाहें तो नहीं आएगा समझ में। आपको इस बात का स्टडी करना पड़ेगा कि कुंद कुंद और अमृतचंद इस शब्द का प्रयोग किस अर्थ में करते हैं। इसको बोलते हैं तुम्हें कुंद कुंद, तुमने कुंद कुंद पढ़ा है, तुमने अमृतचंद पढ़ा है, जैसे तुम्हें लक्ष्य छाप आचार्य कुंद कुंद जी महाराज को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, तुम्हें तो ऐसा कहलवाना है क्यों? माने तुम कुंद कुंद ने 2000 वर्ष पहले जो शब्दों का अर्थ किया तो उसका अर्थ जो आज की भाषा में बदल गया है, तो तुम आज की भाषा वाला अर्थ करते हो कि उस समय उनने क्या अर्थ किया था, वो अर्थ को तुम जान लो गहराई से स्टडी करके, उसको बोलते हैं कुंद कुंद को पढ़ना। ऊपर जाते हैं ना तो कोर्स में समय सार और प्रयोजन सार नहीं रखे जाते हैं, कोर्स में कुंद कुंद और अमृतचंद रखे जाते हैं, माने कुंद कुंद की जितनी ग्रंथ हैं उन तुम सबकी स्टडी करो। क्या उससे क्या फायदा होता है? क्योंकि हमको एक ग्रंथ में तो लिखा है कि ये कुंद कुंद का है और दूसरे में नहीं लिखा है, तो हम ये निर्णय कर सकते हैं कि ये कुंद कुंद का है कि नहीं है, ये गाथा कुंद कुंद की है कि नहीं है। अभय कुमार जी क्या, जैसे मैं तारगी टीका में जो गाथाएं मिलती हैं, मैं क्या कह रहा हूं, वे कुंद कुंद की है कि नहीं, इसका निर्णय हम कैसे करें? हम कुंद कुंद की भाषा से परिचित हों तो एक मिनट में निकाल के बता देंगे कि कुंद कुंद की इस तरह की भाषा है, ऐसा तो कुंद कुंद कभी लिख ही नहीं सकते हैं। समय सार में या प्रतन सार में बहुत सी गाथाएं ऐसी हैं कि श्वेतांब मर्मद के खंडन में ही लिखी गई हैं, और वे थोक के भाव में एकदम एक साथ लगातार, और जो अमरचंद की टीका में नहीं मिलती है जयसेन की टीका में मिलती है। क्या तो मालूम क्या निष्कर्ष निकाला आपके बहुत बड़े आचार्य ने, میں بھی آبداری ہوں نا, میں نہیں کہہ رہا ہوں جس نے نکالا وہ کہتے ہیں, میں بھی آبداری ہوں نا کہ کند امر چندر کو سیتامبر مت کا کھنڈن کرنا اشٹ نہیں تھا, اس لیے انہوں نے بے سب گاتھائیں نکال دی. کیا نسخہ نکالا, ہم نے یہ لکھا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ امر چند کے سامنے جو پرتی رہی ہو اس پرتی میں یہ گاتھائیں نہیں ہوں, اور جیسے نا چاری کو یہ پرتی ملی ہو اس میں یہ پرتی میں یہ گاتھائیں ہوں, ایسا ہو سکتا ہے. کون سی بڑی بات ہے. ایک بات اور بتا دوں آپ کو, یدپی یہ سامان سوتا کے زیادہ مطلب کی نہیں ہے, ہمارے ودوانوں کے مطلب کی ہے. ہمارے پہلے آچاری کیا کرتے تھے, ٹیکا کار, کہ کوئی گاتھا ایک دم سرل آ گئی اور جس کا ارتھ انہیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ لکھ دیتے تھے سگمم ایتت, پر اتنا تو گاتھا لکھی اور اس کا ارتھ کیا لکھا, سگمم ایتت, یہ تو سرل ہے ختم, اور آگے گاتھا لکھے. اب کئی سگموں میں تب لکھ دیتے تھے اور کئی لکھتے ہی نہیں تھے, وہ چھوڑ کے چلے جاتے تھے, چھوڑ کے چلے جاتے تھے. انہوں نے ٹیکہ نہیں لکھی تو بعد کے لوگوں نے جو آتم کھاتی کی صحت کوئی سمے سال لکھ رہے تھے تو انہوں نے ٹیکہ نہیں لکھی اس کی, تو انہوں نے وہ گاتھا ہی چھوڑ دی. کئی سمبھاونائیں ہو سکتی ہیں, آپ سمجھ گئے نا. اب اس کے آدھار پر ہم ڈسیزن کرتے ہیں اس میں کون سی سمبھاونا پربل ہے اور کون سی سمبھاونا کمزور ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان گاتھاؤں کا اس طرح ہی نہیں ہے, ان گاتھاؤں میں بھاشا کا کمزور ہے, بھاو کمزور ہے, اور وشے وستو ہم ان کو ہٹا دیتے ہیں وہاں سے تو وشے وستو کے کرم میں کوئی انتر ہی نہیں پڑتا ہے, یہ بیچ میں تھیگرے جیسے لگتی ہیں. اور وہ بات آگے پیچھے کی گاتھاؤں میں کہی جا چکی ہے. کیا تو کہتے ان کو بولتے ہیں پرچھپت, کہ جو بعد میں کہیں سے اس میں ڈال دی گئی ہیں کسی نے کیسے کیا. تو یہ سب چیزیں میں ہم کو ان کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم کند کی بھاشا کا ادھیئن کریں, ان کے بھاووں کا ادھیئن کریں, ان کے پرتیپادن کرنے کی شیلی کا ادھیئن کریں, امر چند کی بھاشا کا ادھیئن کریں, ان کے پرتیپادن کی شیلی کا ادھیئن کریں. جو پنچادھیائی کے رچناکار ہیں, جو لوگ امرت چند کو مانتے ہیں, ان میں ہمارے گرو جی پنڈت مکھن لال جی پرمکھ ہیں. اور ان کا ایک ترک ہے کہ جس طرح کا پرتیپادن امرت چند نے اپنے گرنتھوں میں کیا ہے, ان کی اسٹائل ہے, خاص کر تتواس بودھ ہے, وہ چھندوں میں لکھا نا, تو ان ویسا یہ بھاشا یہ ملتی ہے. اور ہم کہتے ہیں پھول چند جی, دیوکی نندن جی اور جو ٹیکا کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ پانڈے راجمل جی کا ہے. کیوں کہ پنچادھیائی میں جو نیوں کی پدھتی ہے وہ امبے چندراچاری کی ٹیکا میں نیوں کی پدھتی نہیں ہے, اور کلش ٹیکا میں وہ نیوں کی پدھتی ہے. اب نیوں کا جو گہرا ادھیئن کرے گا, میرا مطلب سمجھ گئے نا, اس کو یہ پتا چلے گا. دو تین ودیارتھی دکھتے ہیں مجھے یہاں جو نیوں کا گمبھیر ادھیئن کرنے والے ہیں, سمجھ لو یہ باتیں میں صرف ان کے لیے ہی کہہ رہا ہوں, باقی بھی سمجھ میں آ جائے تو بہت بڑھیا ہے. کہ کیسے کہاں 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 کا ادھارن پکڑ سکتے ہیں. ابھی جی نے چرچا کی تھی تھوڑی نئے چکری کی کلاس میں, یہ سر پہلے دن کی تھی کب کی تھی, تو وہ کہاں سے پکڑ سکتے ہیں. تو بدھی پوروک اور ابدھی پوروک کا ارتھ اور جگہ الگ ملتا ہے اور کلش ٹیکا میں الگ ملتا ہے. کیا سنو, بہت مارمک بات ہے. کیا ملتا ہے اور جگہ, اور جگہ تو اپن بدھی پوروک کریں تو بدھی پوروک, ہم بدھی پوروک نہیں کیا, دھکا لگ گیا تمہیں, ہم کہتے ہیں بدھی پوروک بھیا لگ گیا, ہم نے تمہیں دھکا دیا نہیں ہے لیکن ہمارا دھکا تم کو لگ گیا ہے, हमने बुद्धिपूर्वक तुम्हारी निंदा नहीं की, लेकिन हमने जो बात कही वो शायद निकल गई है, अबुद्धिपूर्वक निकल गई है, हम आपकी माफी मांगते हैं। तो हमने जब लोग कहते ना तू बोल कि तूने सचमुच सोच समझ के कही है कि ऐसे ही हो गया, कि मैंने सोच समझ के कही है, तो फिर झगड़ा है, फिर निबट लेंगे। अगर नहीं नहीं साहब तो गलती हो गई तो बात खत्म, समझे। ये बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक का अर्थ हम लोग भी सब समझते हैं और शास्त्रों में भी बहुत है ऐसा प्रयोग। अब कलश टीकाकार ने क्या किया, इसका अर्थ क्या किया मालूम है? वो कहते हैं जो राग हमारे ज्ञान का गेय बन जाए वो बुद्धिपूर्वक, और जो राग होवे तो आत्मा में लेकिन हमारे ही ज्ञान का गेय नहीं बने उसका नाम अबुद्धिपूर्वक। ऐसा कले उतरता है आपके क्या? जैसे ये राग जो हुआ हमें, हमें पता चल गया कि ऐसा राग मुझे हुआ, तो उसका नाम हो गया बुद्धिपूर्वक, जो जानने में आया। और जो राग हमें पता ही नहीं चला है ना, क्या दर्शन गुणस्थान में संतुलन कसाई के उदय से राग होता है, उसका हमें कहां पता चलता है? तो केवल ज्ञान गम है। बहुत से हम लोग कहते रहते हैं ना भैया हमें तो उसके प्रति बिल्कुल राग द्वेष नहीं है, द्वेष नहीं है तो हम थोड़ा मान लें, राग नहीं है तो हम मान लें, राग द्वेष नहीं है ये मान नहीं सकते, क्योंकि तेरा गुणस्थान कौन सा है? गुणस्थान तो बादशाही में बैठा है, वो कहता मुझे बिल्कुल राग द्वेष नहीं है, आप क्या करें है? उन्हें गुस्सा तो आता ही नहीं है, जैसा नाम शांति वैसा ही बिल्कुल नहीं कर, कभी गुस्से में हमने देखा नहीं। उन विद्यार्थियों को पूछो तुम्हें क्या देखेगा शांति का गुस्सा, शांति का गुस्सा तो विद्यार्थियों को देखेगा समझ में आया ना, ये तुम्हारा दिखने नहीं दिखने से निर्णय नहीं होता है। शास्त्र कहते हैं कि एक इंद्री के 23 कसाएं सदा उदय रूप रहती हैं। ये पेड़ में तुम्हें कहां दिखता है? आलू को गुस्सा करते तुम कब देखते हो? आलू को कौन सा अभिमान है, आलू को कौन सा लोभ तुम्हारी दिखाई देता है? लेकिन ये सब कसाएं सिर्फ दो नहीं है, दो कौन सी नहीं है, नपुंसक स्त्री वेद और पुरुष वेद, क्योंकि वो नपुंसक होता है। बाकी 23 कसाएं बिल्कुल मोदय रूप मौजूद हैं, दिखने से क्या मतलब है? जो दिखे तो बुद्धिपूर्वक, नहीं दिखे तो बुद्धिपूर्वक, ये उन्होंने अर्थ किया। और बनारसी दास ने फिर भी उसको अपनाया है, क्योंकि वो कलश टीका के आधार पर ही, उनके सारा समय सार का अध्ययन कलश टीका के आधार पर था। अभी कैसे किसी को कुछ पता ही नहीं लगता, ये बढ़िया बात है इसमें, ये बढ़िया बात है इसमें, ये बढ़िया बात है इसमें, फर्क ही समझ में नहीं आता। लेकिन जब वो जो नयाओं का आप स्टडी करेंगे तो वहीं ये बताएंगे इस नए से और वो बताएंगे इस नए से। अब कलश टीकाकार को ऐसा अर्थ क्यों करना पड़ा, ये सोचा शांति जी, उनकी मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी उनकी? क्योंकि उनने ये मान लिया कि परद्रव्यों के संयोग को हम किसी नए में नहीं ले सकते, ये स्त्री पुत्र किसी भी नए से अपने नहीं है, शरीर किसी भी नए से अपना नहीं है, ये अपना है ही नहीं, इसे अपना मानना कहना सब मिथ्यात्व है, ये उनने प्रतिपादन किया है। अब समझ में आपकी ना, तो अगर ये कोई चीज बिल्कुल पृथक है, हिंदुस्तान हमारा, ये कोई बात है, ये भी कोई नए का विषय है, ये होता ही नहीं किसी के। अब विवाह नए के चार भेद हैं, तो अपने इस जो अपनी जो नए चक्र की शैली है उसमें तो स्त्री पुत्र मकान जा उपते तो सद्भुत विवाह नए से हो गए, क्यों? और फिर शरीर हो गया अनुपचेत सद्भूत व्यवहार नए से, रागादि हो गए उपचेत सद्भूत से, और केवल ज्ञानादि हो गए अनुपचेत सद्भूत से, निबट गया काम। अब उनने वे दो नए ही नहीं माने, और चार भेद हैं, उनको तो वे कह नहीं सकते हैं कि दो ही भेद हैं, माने असद्भूत वाला नए वे मानते ही नहीं जो जो माने, तो उनने क्या कहा उसी में चार उन्हें घटाना है। तो उनने कह दिया कि बुद्धिपूर्वक वाला राग वो उपचरित असदूत, और जो अबुद्धिपूर्वक राग वो अनुपचरित असदूत, उसे दोनों का सदभूत में डाल दिया और फिर वो ज्ञान वगैरह गुण वगैरह भेद करके उन्होंने इससे अपनी खाना पूर्ति की। अब समझ में आए ना आपकी में, ये सब टीका है। अब टिप्पणी सुनो कि यदि स्त्री पुत्रादि पापन को मानने वाला और इस देह को अपना कहने वाला नए नहीं होगा तो फिर ये व्यवहार कैसे चलेगा कि ये मेरी स्त्री है और ये मेरी स्त्री नहीं है, तो अनुमृत कैसे बनेंगे जब कोई स्त्री अपनी है ही नहीं किसी भी नए से, सब परस्त्री ही है, तो अनुमृत का व्यवहार कैसे होगा? परिक्रमा परिमाण वृत्त का व्यवहार कैसे होगा? बहुत से व्यवहार खड़े हो गए, हम कैसे चलेंगे बोलो। तो उन्होंने मालूम क्या जवाब दिया है कि हम नया भास से काम चला लेंगे। अरे जब तुमने उनसे ही काम तुम्हें चलाना पड़ा, उनके बिना तुम्हारा काम नहीं चला, तो उनको नयों की श्रेणी में स्वीकार करने में क्या तकलीफ है? स्वीकार तो तुमने किया ही ना, उनके बिना तो तुम्हारा काम चले ही नहीं ना। समझ में आए ना, ये टिप्पणी है। वे झूठा है, इसका नाम कोई टिप्पणी विप्पणी नहीं है। हमारा तर्क हम बता रहे हैं कैसे हो सकता है। अब देखो मैं आपको स्पष्ट करके समझाता हूं जरा, और खोलता हूं सबके लिए। क्यों भाई साहब, आप ऐसा चाहते हो कि एक दिन सारा हिंदुस्तान जैनी हो जाए, कोई भी एक आदमी अजैन नहीं रहे? इससे बढ़िया तो और क्या होगा? ये बात हो जाए तो क्या कहना? पहले था ना आदिनाथ के जमाने में सारा देश जैनी ही था, प्राण पढ़ के देख लो। महावीर के जमाने में नहीं कह सकते क्योंकि अभी बहुत ताजी बात है तो हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे, और आदिनाथ के जमाने में क्या दिक्कत है? मैं कहता हूं वो जाने दो, उनके था या नहीं था, तुम तो आज की बात करो। ऐसा बहुत ही बढ़िया बात है, इससे बढ़िया और बात क्या होगी? ठीक है, बढ़िया बात है ना। अब मैं आपसे पूछता हूं दरीचंद जी कि जैनी को कौन सा धंधा करना चाहिए और कौन सा नहीं कर सकता? करना चाहिए नहीं, कौन सा धंधा जैनी कर सकते हैं और कौन सा नहीं कर सकते? जैनी सेना में जा सकते कि नहीं? जैनी पुलिस में भर्ती हो सकते कि नहीं? जैनी लैट्रिन साफ करने वाला काम कर सकते कि नहीं? जो वे करते हैं ना थे, ये झाड़ू लगाने वाला काम जैनी कर सकते कि नहीं? दूसरों के कपड़े धोने का काम जैनी कर सकते कि नहीं? नहीं, ये क्या बात करते हैं? जैनियों को तो बढ़िया से बढ़िया काम होना चाहिए। ए वो जैनी नहीं जो एक करे, क्यों वो जैनी नहीं तो सारा देश जैनी कैसे होगा? और सारा देश जैनी होगा तो हमारे कपड़े भी नहीं धुले रहेंगे, हमारे बाल भी नहीं बने रहेंगे, क्यों क्या करोगे बोलिए? हमारा गांव की सफाई होगी ही नहीं? जैनियों के देश में सेना होगी कि नहीं होगी? भरत चक्रवर्ती के पास सेना थी कि नहीं थी? जैनियों के पास पुलिस होगी कि नहीं होगी? अरे स्वर्गों में भी होती है लोकपाल नाम के। सोचते ही नहीं कि हम क्या कह रहे हैं। यदि सारा देश जैन हो सकता है, हो, तो आपको कोई भी ऐसा काम जो देश के लिए आवश्यक है वो जैन ही नहीं कर सकता, ये नहीं मान सकते आप। कहने साहब क्यों करेंगे? तो क्या करोगे? ये झाड़ने वाले नेपाल से बुला लोगे? तो वे नेपाल वाले यहां आके रहेंगे और 10 साल रहेंगे तो यहां के नागरिक बन सकते क्या? नहीं क्या? अरे यही क्यों हो गए ना, कोई सोचता ही नहीं है। क्या आप समझ गए ना? वहां जैनी बन जाना बहुत अच्छा है, और जैनी ये नहीं कर सकता, जैनी ये नहीं कर सकता। तुम करो ये नहीं कह रहे हम। जब हमारा व्यक्तिगत किसका चुनाव आएगा तो हम बढ़िया से बढ़िया काम चुनेंगे, हम क्यों गलत काम चुनेंगे? लेकिन उस काम को करने वाले को जैनी नहीं हो सकता, ये नहीं कह सकते, नहीं कहना चाहिए। किसी को हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, हम क्यों सुनेंगे गलत से गलत काम? ये पढ़ाने का काम किसका था? वो तो ब्राह्मणों का था, तो जैनियों ने क्यों किया? ये जैनियों तराजू तोले क्यों? हम जैनियों के ब्राह्मण हैं। जो ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं वो ब्राह्मण क्या? आप समझे ना, क्या ब्राह्मण हो आप? ब्राह्मण हो आप? ब्राह्मण बनना पसंद कर रहे? अरे क्यों क्यों नहीं बनेंगे? ब्राह्मण कोई गाली है? तो हमने राजमल जी से ये कहा, हालांकि हमने उनमें 400 फर्क का फर्क है, फिर भी हमने उनसे कहा कि बताओ ये व्यवहार तुम कैसे चलाओगे? कि हम व्यवहाराभास से काम चला लेंगे। आखिर उनको एक कहना पड़ा, तो हमने कहा उन्हें व्यवहाराभास से काम चलाओगे, इससे बढ़िया तो यही है कि उनको ही तुम नयों की श्रेणी में रख लो। ये टिप्पणी है। टिप्पणी का अर्थ क्या है? कि हमारे दिमाग में उसके संबंध में जो तर्क वितर्क खड़ा हुआ वो तो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया, और आप निर्णय करो। हमने अलग क्या लिख दिया, हम उसे रिजेक्ट क्या कर रहे? प्रशंसा भी कर रहे कि बहुत अच्छा, उन जैसा पंचाध्यायी जैसा ग्रंथ जिसमें प्रवाह हो भाषा का, इतना अच्छा गहरा अध्ययन हो, इतनी गहराई से विवेचन हो, शोधने में नहीं मिलेगा। तो अब के साहब आपके गुरु तो मानते हैं कि हमने चंद का हमने, अरे गुरु, हम गुरु की क्या, हमें हर बात में हम बराबर तर्क से, युक्ति से, न्याय से सब देखेंगे। नहीं तो यदि ऐसी करने लग जाए तो हर बात मानेंगे, तो एक जगह कहीं गलती हो गई फिर वो गलती अनंत काल तक चलेगी। टोटम जी ने क्या लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, कि एक दो गलत बात आगे चलेगी नहीं, और ज्ञानी जन चलने देंगे नहीं, उसका तत्काल निषेध कर देंगे। और उनने किया। जब मैं टोटम जी पर रिसर्च कर रहा था तो एक किताब मुझे मिली, उसका नाम था चर्चा समाधान। तो उस किताब पर, आपने बड़े मंदिर में ही है शायद, वो अंत में एक टिप्पणी लिखी थी। पूरी किताब लिखी गई, खत्म हो गई, तो अलग भाषा में राइटिंग बिल्कुल अलग है। कि ये चर्चा समाधान नामक ग्रंथ आगरा में भूधर दास ने लिखा, और यहां टोडरमल जी की सभा में इसे बांटा गया। तो टोडरमल जी साहब ने फरमाया कि इसमें 135 तक के प्रश्नोत्तर तो आगम के अनुसार मिलते हैं, और आगे के प्रश्नोत्तर आगम से मिलान खाते नहीं हैं, इसलिए स्वाध्यायी जन जागृत रहकर इसे पढ़ें। नहीं पढ़े नहीं लिखा, ठीक है? क्यों हिसाब से दिखा टिप्पणी करना तो अच्छी बात नहीं थी? तो उनने खुद ही लिखा कि हमारी ड्यूटी है भाई साहब, हम नहीं करेंगे तो वो बात चलती निकलेगी ना। तो शुरू के 135 बढ़िया से बढ़िया निकलेंगे, लोग कहेंगे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और फिर अंत में वो गलत बातें भी चल पड़ेंगी समाज में, क्या करें। तो आज एक जगह एक किताब में ये लिखा मिल गया, तो हमने अपने पंडित टोडरमल व्यक्तित्व करते समय ये बात लिखी कि भाई भूधर दास जी की हर बात को प्रमाण के तौर पर पेश नहीं की जा सकती। तो आप समझ में आए ना? तो ये पद्धतियां हैं, इसमें कोई राग द्वेष की बात नहीं है, किसी के विरोध की अवरोध की बात नहीं है। ये जैन धर्म की के मूल मारक को सुरक्षित रखना है कि नहीं रखना है। तो यदि हम अपनी भलाई बुराई को देखेंगे, रिश्तेदारी देखेंगे, तो ये जैन धर्म का मूल मारक कैसे सुरक्षित रहेगा, इसकी हमको बात सोचना चाहिए। देखो अभी ना, अतत्व की उपलब्धि रूप से अर्थात तत्व के अज्ञान रूप से ज्ञान में स्वाद रूप होता हुआ अज्ञान का उदय है। अतत्व की उपलब्धि माने अतत्व तो प्राप्त हुआ नहीं, और जो गलत बात है उसको हमारे ज्ञान में आई और उसका हम स्वाद ले रहे हैं। स्वाद ले रहे हैं माने अनुभव पूर्वक, ऐसा उसका नाम है अज्ञान का उदय। अनुभव पूर्वक माने हमको बिल्कुल पूरी तरीके से वो चित्त में को स्वीकृत हो गई। अब नवीन कर्मों के हेतुभूत यह अज्ञानमय भाव मिथ्यात्व असंयम कषाय और योग के उदय के रूप में चार प्रकार का है। वो अज्ञान भाव ही चार प्रकार का है, ये टीका में इतना साफ लिखा है। अभी देखो, मैं संस्कृत टीका इसलिए खोल के रखी है, आप देखो निकालो पेज नंबर 213। मैं पढ़ता हूं, अतत्तोपलब्धि रूपेण ज्ञाने स्वद मानो अज्ञानोदय मिथ्यात्व असंयम कषाय योगोदय। इन इन उदय है ना, तो मिथ्यात्व का उदय, कषाय का उदय, योग का उदय, ऐसा लेना, हरेक में उदय लगाना। कर्म हेतु वह कर्म के हेतु है, तन्मयत्वात् तन्मय होने से चत्वारो भावा, ये चार भाव अज्ञानमय है, तन्मय माने अज्ञान से तन्मय है, इसलिए चारों भाव हैं, इसके भेद हैं ये चार। अज्ञान के भेद हैं चार, माने मिथ्यात्व अज्ञान का भेद है, कह रहे अवरति अज्ञान का भेद है, कषाय अज्ञान का भेद है, और योग अज्ञान का भेद है। ये चारों अज्ञान के भेद हैं, और इन चारों का उदय, उसका नाम अज्ञान का उदय है। अब ये बहुत जगह प्रयोग आएगा, अब हमारा ध्यान इस पर नहीं जाता है अभय कुमार जी, तो हम जब भी अज्ञान के उदय की बात आती है तो ये अर्थ निकालते ही नहीं। अब गुरुदेव का क्या नेचर था कि साहब ये जो अज्ञान का उदय का लिखा है, हाँ वो मिथ्या मिथ्यात्व मिथ्यात्व क्या सुना मिथ्यात्व बस, उसमें से ज्यादा कहने की जरूरत क्या है, वो मिथ्यात्व के अर्थ में, अवरति के अर्थ में, वो कषाय के अर्थ में है। अब अज्ञान का उदय लिखा और कषाय का अर्थ लिखा, और वहां लिखा कषाय से योगा पैदि विदेदा हृदय अनुभागो कषाय दो अंती, योग से प्रकृति और प्रदेश बंद होते हैं और कषाय से स्थिति और अनुभाग बंद होते हैं। यहां लिखा ना क्लियर, और उसमें लिखा है सूत्र तत्व कषायो दात तीव्र प्रणाम, ऐसा कुछ आया ना एक जगह। अब मैं कहता हूं कि उसका सही अर्थ क्या है, सुनो। मेरे पास वीर सागर का बहुत प्रेसर है कि दादा आज तत्वाशुद्ध की टीका लिखो, अभी मेरा दिमाग में बन भी रहा है कि अभी ये नियम सार खत्म हो जाए तो मैं तत्वाशुद्ध पर लिखूं, क्योंकि कई सूत्र ऐसे हैं कि जिनके बारे में बहुत गड़बड़ है। एक इंद्रिया निंद्रिय निमित्तम अर्पता नर्पित सिद्धे, ऐसे बहुत महत्वपूर्ण कई सूत्र हैं जिनका अर्थ बहुत गलत किया जाता है। पहले अध्याय का वो जो उपांत सूत्र है ना 31वां है, कौन सा है वो, ये जो है ना नयों के पहले का है, ऐसे कई हैं जो मेरे दिमाग में हैं कि जिनका अर्थ सही रूप में नहीं जाना। ये उपकार वाले हैं सब, परस्परोग्रह जीवानाम, इन सूत्रों पे लिखा जाना बहुत जरूरी है ना, इसलिए मेरा दिमाग अब उधर को थोड़ा सा बन रहा है क्या। और उनके एक क्यों सारी समाज में बहुत गहराई से पढ़े जाते हैं और तर्क युक्तियों से ये प्रकरण अच्छी तरह से आ जाएंगे, यदि अकेले लिख दूं तो फिर वो झगड़ा का कारण बन जाएंगे क्या। और जब वो टीका में बीच में आएगा वो प्रकरण सहज भाव से, और उन्हीं वक्त तर्क से लिखूंगा तो वो नेचुरल होगा, समझ में ना ऐसा। तो अभी क्या लिखा देखो, ये चार पांच प्रकार के उदय हैं, तो इनने दो पंक्तियों में शुरू में ये स्पष्ट कर दिया। अब ये देखो कितना ये है, कुंद कुंद में गंध नहीं दिखती है वहां, और अमृतचंद की यह समझ में आ गया कि ये अलग से पांचवा कहां लगा दिया, ज्ञान का उदय है, और ज्ञान अवर्णी कर्म के उदय वाला उदय तो यहां हो ही नहीं सकता है, ख्याल में ना। तो मिथ्यात्व का उदय और असंयम का उदय, असंयम का उदय भी लेना, क्योंकि मिथ्या दर्शन चला गया और फिर भी तो बंद हो रहा है, इसलिए वो असंयम का उदय, वो भी अज्ञान का उदय। अब असंयम ही वाले पांच में चौथे गुणस्थान वाले के यहां अज्ञान कहां है, अभय कुमार जी अज्ञान का उदय यदि योग का उदय है तो ये अज्ञान देर में गुरुस्तान में भी है। आया कुछ समझ में? जिनकी समझ में आया वो हाथ उठाओ, मालूम पड़े कितने लोगों की समझ में आया। क्यों? कि जब योग को भी अज्ञान का उदय का भेद कहा है तो तेरहवें गुणस्थान में संयोग केवल ही है ना। अब केवल ज्ञान हो गया और अज्ञान का उदय और उससे बंद हो रहा है। क्या अभी समझ? अब फिर आप समझिए ना, ये लिखा ना, चार चीजें अज्ञान का उदय के भेद हैं। कौन? मिथ्यात्व, अवृद्धि, कषाय और योग। तो योग माने संयोग केवली, माने योग है ना, तो उनके योग का उदय है ना, तो योग का उदय है तो ये अज्ञान का उदय हो गया। अब केवल ज्ञानी के अज्ञान का उदय किसकी समझ में आए, पिटाई हो जाए। उसके लिए इतने बैकग्राउंड से बात समझानी पड़े आगे पीछे से, तो लोगों के गले उतरे। वैसे तुम उसे कह के देखो मैंने गजब का अर्थ निकाला है और ऐसा कह के चले गए तो बहुत लेने के देने पड़ सकते हैं। तो ये प्रतिपादन करने के लिए पहले कितनी जिम्मेवारी है, क्यों? अब आगे पीछे की सारी व्यवस्था दिमाग में हो, समझाने की ताकत हो और उतना थोड़ा पुण्य का उदय भी हो, क्योंकि ये पिटाई से पुण्य के उदय से बचोगे, इनसे नहीं बचोगे। क्यों? बड़े बड़े ज्ञानियों की पिटाई हो गई ना, किनकी होगी? पारसनाथ की हो गई ना। अंतर्भूतवाद केवल ज्ञान होना था और कमठ ने कर ही दी। आगे होंगे बाद में बताने वाले, तो बताया होगा तब तक तो कितने पत्थर बरस गए थे। ऐसा नहीं ना, तो नहीं हो यदि इतनी ये देखो तो नहीं कहना क्या। समझे ना, मैंने क्या क्या इफेक्ट कहाँ कहाँ आएगा उसको हमारे दिमाग को हमें दौड़ा करके उसके बाद विवेक से निर्णय करना चाहिए। देखो पढ़ते हैं हम आगे, तत्व के अश्रद्धान रूप से ज्ञान में स्वाद रूप होता हुआ। देखो अज्ञान क्यों कह रही, ज्ञान में वो अतत्व का श्रद्धान उदय रूप होता हुआ, वो मिथ्यात्व का उदय है, लेकिन हरेक में ज्ञान में स्वाद रूप कह रहे। वो अज्ञान नाम क्यों दिया? देखो समझने लगे, तत्व के अश्रद्धान रूप से ज्ञान में स्वाद रूप होता हुआ, लिखा ना, मिथ्यात्व का उदय है। अवरमण रूप से ज्ञान में उदय स्वाद रूप होता हुआ असंयम का उदय, कलुष उपयोग के रूप में ज्ञान में स्वाद रूप होता हुआ कषाय का उदय, सुभाषु प्रवृत्ति और निवृत्ति के व्यापार रूप से ज्ञान में स्वाद रूप होता हुआ योग का उदय। अब उन्होंने जो कहा तो फिर आगे जो परिभाषा सारी दी वो परिभाषा कितनी व्यवस्थित है। मैं कल दादा से बता रहा था कि जब आत्मख्याति पढ़ते हैं और वो नियम सारगी टीका पढ़ता हूं तो मुझे बहुत ही अटपटा लगता है। इन पौद्गलिक मिथ्यात्वादि के उदय के हेतुभूत होने पर जो पुद्गल द्रव्य ज्ञानावरणादि भाव से आठ प्रकार स्वयमेव परिणमता है, वह कार्मणा वर्गणागत पुद्गल द्रव्य जब जीव में निबद्ध होता है तब स्वयमेव अज्ञान से स्वपर के एकत्व के अध्यास के कारण ये वो मिथ्यात्व वाला अज्ञान लिया है। वो जो लिया ना, वो तेरहवें गुणस्थान वाला नहीं लेना। देखो तेरहवें गुणस्थान के पहले तक का अज्ञान था और एक अज्ञान और एक और निकला तेरहवें गुणस्थान वाला, ये सब नहीं लेना, ये मिथ्यात्व वाला लेना। लिखा अध्यास के कारण तत्व अश्रद्धान आदि अपने अज्ञानमय परिणामों का हेतु होता है। गाथा और टीका के इसी भाव को भावार्थ को पंडित जयचंद जी छाबड़ा इस प्रकार व्यक्त करते हैं। जयचंद जी छाबड़ा को क्यों लिखा? क्यों? मुझे ये बताना ज्यादा इष्ट है कि जयचंद जी छाबड़ा के दिमाग में ये बात पूरी गहराई से पकड़ में आई थी, इससे महिमा आती ना उनकी, हमें भी। क्या माने? ऐसा नहीं था कि उनके दिमाग में ये बात नहीं आई थी, फिर गुरुदेव सिंह के कोटेशन उन्होंने भी पूरी तरह पकड़ा था, और हम अपने को गुरुदेव का स्वाध्यायी सब मानते हैं और हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है, और कई दफे हम पढ़ गए हैं, तो हमको एक दफे गंभीरता से अपनी बुद्धि पे सोचना चाहिए और अध्ययन को और गहरा करना चाहिए ना। क्या अज्ञान भाव के भेद रूप, एक समय हो गया कल, ये भावार्थ अपन कल पढ़ेंगे।